الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम तसहील बहश्ती ज़ेवर से किताब सुलूक और एहसान का मौजू पढ़ रहे हैं। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हकीम उल उम्मत के लक़ब से भी मशहूर हैं, यानी उम्मत का हकीम। हकीम कौन होता है? एक तो हिकमत वाला, विजडम वाला, उसको भी हकीम कहा जाता है। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से अल हकीम भी एक नाम है। लेकिन हकीम का एक और भी मफहूम है जो कि आवाम उन्नास के अंदर ज़्यादा मशहूर है, वो है बीमारियों का इलाज करने वाला। ठीक है, तो हकीम उल उम्मत यानी उम्मत की बीमारियों का इलाज करने वाले, ये हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उलमाए कराम के दरमियान इस लकब से मशहूर थे। तो कौन सी वाली बीमारियों का इलाज करने वाले? तो चूंकि इल्म दीन से इनका ताल्लुक है, रूहानियत से इनका ताल्लुक है, तो जिस्मानी बीमारियों का इलाज करने की वजह से इनको ये लकब नहीं मिला, बल्कि रूहानी बीमारियों का इलाज करने से इनको ये लकब मिला। इलाज करने का मतलब ये नहीं होता कि बीमारी को दूर कर देना, ठीक है, इलाज करने का मतलब शिफा देना नहीं होता, क्योंकि शिफा देना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, इलाज करने का मतलब ये होता है कि असबाब इख्तियार करना, इलाज के जो असबाब होते हैं यानी दवाई, ठीक है, और दवाई से भी पहले जो मर्ज की तशखीस, सही तशखीस होगी तो फिर उसके बाद सही दवाई पड़ेगी। ठीक है, ये काम होता है मुआलिज का, और इसी को इलाज करना कहते हैं। शिफा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। तो जिस तरह जिस्मानी बीमारी के अंदर जो जिस्मानी डॉक्टर होते हैं, उनका भी सिर्फ यही काम होता है कि मर्ज की सही तशखीस करके दवा प्रेस्क्राइब कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद दवा को खाना, ये मरीज का काम होता है, और शिफा देना ये अल्लाह का काम होता है। बिल्कुल इसी तरीके से रूहानी अमराज का भी यही मामला है कि रूहानी अमराज की तशखीस कर लेना और उसके बाद सही उसकी क्योर बता देना, दवा बता देना, फिर उसके बाद उस दवा का इस्तेमाल करना, ये भी रूहानी मरीज का अपना काम होता है, और उसमें शिफा देना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम होता है। तो हजरत ने फिर किताब सुलूक वल एहसान जो लिखी, तो उसमें अखलाक जमीमा और उनका इलाज, ठीक है, इसके बारे में कुछ थ्योरी लिख दी ताकि पढ़ करके हमें कुछ बात समझ में आए और हम जो है वो इलाज मुआलजे की तरफ माइल हो जाए, हमारा हमारी तवज्जो इस तरफ बन जाए। ठीक है, तो इसमें से हमने बहुत सारे अमराज के बारे में पढ़ लिया है। अब एक आखिरी मर्ज जो आज पढ़ना रह गया है वो है खुद पसंदी और उसका इलाज। खुद पसंदी, ठीक है, खुद से यहाँ पर क्या मुराद? ये वो पहनने वाला खौद नहीं है जिसको के पहन करके ना सिपाही लड़ने के लिए जाते थे, बल्कि ये खुद है। खुद का मतलब सेल्फ, यानी इंसान का अपना आप, अपना आप। ठीक है, तो अपने आप को पसंद करना, अपने आप से मोहब्बत करना। ठीक है, खुद पसंदी यहाँ पर एक मनफी मानी में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसका कोई अच्छा मानी नहीं है कि अपने आप से नफरत ना करना, अपने आप से नफरत ना करना, ये एक अच्छा मतलब है। ठीक है, क्योंकि अपने आप से नफरत करना जो है ये एक अच्छी बात नहीं है, तो नफरत ना करना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर अपने आप से नफरत ना करना का मानी इस्तेमाल नहीं हो रहा, के मानी में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि अपने आप से मोहब्बत करने के मानी में लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, एक मनफी अंदाज से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम बीमारियों की बात कर रहे हैं ना, और बीमारी जो होती है ये कोई मुस्बत चीज नहीं होती, ये तो मनफी चीज होती है, ठीक है। तो खुद पसंदी एक एक रूहानी बीमारी है। इसके लिए जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो इस्तेलाही लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू जुबान में और अरबी जुबान में, उसको उजुब कहते हैं। उजुब, उजुब आयन से, आयन जीम बा। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वैनिटी, VANITY, वैनिटी, ठीक है। तो लफ्जी तहकीक थोड़ी सी आपके सामने बयान कर दी। तो फरमाते हैं अब इसके बाद हजरत का जो जो बयान है वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बारे में फरमाते हैं कि अगर कोई अपने आप को अच्छा समझे, अगरचे दूसरों को बुरा और कम ना समझे, तो ये भी बुरी बात है, ठीक है। अगरचे के दूसरों को बुरा और कम नहीं समझ रहा, लेकिन बस अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक बुरी बात है, सही है। अगर दूसरों को बुरा और कम समझे तो उसको क्या कहते हैं, उसको अगर आप में से कोई बता दे, ठीक है। अगर दूसरों को बुरा समझ रहा है और दूसरों को कम समझ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, उर्दू में या अरबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है इसके लिए? अंग्रेजी का भी लफ्ज बता सकते हैं, क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है इसके लिए, ठीक। तकब्बुर, सही है, दूसरों को बुरा समझना, हकीर, ये क्या बात हुई भाई, तकब्बुर, ठीक है। इसको तकब्बुर कहते हैं, उर्दू में उसको गुरूर कहते हैं, गुरूर, ठीक है, और अंग्रेजी में उसको प्राइड कहते हैं, ठीक है। तो वैनिटी इज नॉट प्राइड, वैनिटी इज डिफरेंट, प्राइड इज डिफरेंट। बाकायदा एक पता नहीं किसकी किताब है, शेक्सपियर की है या किसी और की है, प्राइड एंड वैनिटी, राइट। तो वो अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर हम प्राइड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम वैनिटी की बात कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कि हदीस में आया है कि ये खसलत दीन को बर्बाद करती है, और ये बात भी है कि ऐसा आदमी अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं करता, क्योंकि जब वो अपने आप को अच्छा समझता है तो उसको अपनी बुराइयां कभी नजर नहीं आएंगी, ठीक है। अपने आप को अच्छा समझता है तो भाई कोई अच्छाई पे तौबा करता है, कोई नेकी पे तौबा करता है कि आज मैंने जो है वो हज किया, है अल्लाह अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अस्तगफिरुल्लाह, आज मैंने हज किया, क्या ख्याल है आपका? आपने कभी इस्तगफार किया, आज मैंने हज किया इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, हज के अंदर कोई गलतियां कोताहियां रह गई उसके ऊपर इस्तगफार करेंगे ना, हज करने पर तो इस्तगफार नहीं करेंगे, राइट। नमाज पढ़ने पे इस्तगफार तो नहीं करेंगे, नमाज के अंदर कोई गलतियां हो गई उन पे इस्तगफार करते हैं ना, ठीक है। उसी तरह किसी को सदका खैरात किया, नेकी का काम किया, उसके ऊपर तो इस्तगफार नहीं करते ना, ठीक है। तो भाई इस्तगफार और तौबा, ठीक है, तौबा का मतलब पिछले गुनाहों के ऊपर यानी उन यानी दोबारा ना करने का इरादा करना, नादिम होना, शर्मिंदा होना, ना करने का इरादा करना, और इस्तिगफार का मतलब अल्लाह की मगफिरत तलब करना, अल्लाह की माफी तलब करना, ठीक है ना। तो ये भी दो अलग अलग वर्ड वर्ड्स हैं। इस्तिगफार का मतलब अल्लाह की मगफिरत तलब करना यानी माफी मांगना, और तौबा का मतलब नादिम और शर्मिंदा होना गुनाह के ऊपर, आइंदा ना करने का इरादा करना, और इसके लिए कुछ मेहनत मुजाहिदा करना, ये तीनों चीजें मिलकर के तौबा बनती हैं, ठीक है। तो इस्तिगफार और तौबा जो है ये तो गलतियों के ऊपर की जाती है, नेकियों के ऊपर नहीं की जाती, ठीक है ना। तो अगर कोई इंसान नेकियां ही कर रहा है, या अपने आप को समझ रहा है कि वो नेकियां कर रहा है और गुनाह नहीं कर रहा, तो वो किस बात पर तौबा करेगा, ठीक है। तो ऐसा शख्स जो होता है, जो अपने आप को अच्छा समझता है, जिसको अपनी बुराइयां नजर नहीं आ रही होती, तो वो तौबा नहीं करता फिर, ठीक है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि उससे तौबा की तौफीक छिन जाती है, तौबा की तौफीक उससे छिन जाती है। खाली जुबानी कलामी तौबा किसी दूसरे को सुना देने के लिए, वो तौबा नहीं होती, अन्नदमु तौबतुन, नदामत तौबा है। और नदामत किसके ऊपर होती है? बुराई के ऊपर होती है, गलती के ऊपर होती है। ठीक है, अगर दिल में नदामत नहीं है तो जुबान से तौबा करने से तौबा नहीं होती। दिल में नदामत नहीं है, ठीक है, नदामत कब होगी? जब कोई गलती गलती नजर आएगी, जब कोई गलती गलती नजर आएगी। अगर गलती आपको नेकी नजर आ रही है, गलती नेकी नजर आ रही है, तो फिर तौबा क्यों? नदामत कैसी? अगर नदामत नहीं तो तौबा भी नहीं। ठीक है, इसी वजह से उम्मत जो है ना, आज फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी हो रही है, राइट? आज जो है वो बच्चे मर रहे हैं, तो उम्मत के पास इसका क्या हल है कि प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो, ये हल है हमारे पास। ठीक है, या ये कि सोशल मीडिया के ऊपर जिहाद करो, ये हमारे पास इसका हल है। काफिरों के खिलाफ जिहाद करो, ठीक है, ये हमारा हल है कि हम जो है वो फलस्तीनी भाइयों की और बच्चों की और बहनों की मदद कर रहे हैं बायकॉट करके, और जो है वो मत वो सोशल मीडिया पे जिहाद करके। ठीक है, गुनाहों के ऊपर तौबा ताकि अल्लाह की मदद आए, गुनाहों के ऊपर तौबा ताकि अल्लाह की मदद आए। इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ठीक है, क्यों नहीं दिलचस्पी रखता? इसलिए कि किसी को अपने गुनाह नजर नहीं आ रहे, कोई अपने गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो जब गुनाह ही नजर नहीं आ रहे, गुनाह को गुनाह मानने के लिए तैयार कोई नहीं है, तो फिर किस बात की तौबा? क्यों तौबा? अल्लाह से माफी मांगना, रोना, गड़गड़ाना कि अल्लाह ये जो हशर हुआ हुआ है मुस्लिम उम्मा का, कि जो मर रहे हैं वो अपने आप को बचा नहीं सकते, और जो नहीं मर रहे हैं वो उनको बचाने के लिए जा नहीं सकते, ये ऐ अल्लाह आपका अजाब है हमारे ऊपर, हमारे गुनाहों की वजह से। ये कोई सोचता है? ये कोई भी नहीं सोच रहा, ठीक है ना, ये कोई भी नहीं सोच रहा कि अल्लाह का हमारे ऊपर अजाब है ये, कि मरने वाले अपने आप को बचा नहीं सकते और जो नहीं मर रहा है वो उस उनको जाके नहीं बचा सकते। ठीक है, तो इस वक्त पूरी की पूरी उम्मत इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय चंद पता नहीं गिनती के उंगलियों पे गिने जाने वाले नफूस हो या बहुत ही कम तादाद हो, पूरी उम्मत इस वक्त उजुब का शिकार है, खुद पसंदी का शिकार है, पूरी की पूरी उम्मत, विद सम एक्सेप्शंस ओनली, पूरी की पूरी उम्मत, चाहे जाहिल हो, चाहे इल्म वाले हो, चाहे जो भी हो, सब के सब इस वक्त खुद पसंदी का शिकार है। ठीक है, तो ये मसला आज का सबसे बड़ा मसला यही है, सबसे बड़ा मसला इस दौर का यही है, खुद पसंदी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मी माई सेल्फ एंड आई, दैट्स ऑल आई वरी अबाउट, दैट्स ऑल आई केयर अबाउट, माई सेल्फ। ठीक है ना, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई एम डीपली इन लव विद माई सेल्फ। ठीक है, अपने अपने गुनगाने, जिसको गुनगाने आते हैं वो गुनगा रहा है, और जिसको गाना नहीं आता तो वो खामोशी से अपने आप में मोहब्बत, अपनी अपनी मोहब्बत में गुम है। लेकिन मोहब्बत में सब गुम है, ठीक है, जिनको गाना आता है वो गुनगा रहे हैं, और जिनको गाना नहीं आता वो बगैर गाए मोहब्बत, मोहब्बत के लिए इजहार की जरूरत तो नहीं होती, मोहब्बत तो बगैर इजहार के भी होती है ना, किसी को बोलना नहीं आता तो क्या मतलब उसको मोहब्बत करनी नहीं आती, आती है उसको मोहब्बत करनी, वो खामोश मोहब्बत करता है। ठीक है, वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मुहर खामोशी दिलों में याद करते हैं, है ना। तो शेर कहने वाले शायर साहब ने तो ये अल्लाह के लिए कहा था, लेकिन हम यही मामला अपने नफ्स के साथ, है ना, लबों पे मुहर खामोशी दिलों में याद करते हैं, किसको याद करते हैं? अपने आप को, राइट, अपने नफ्स को, अपने सेल्फ को। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी। ठीक है, ये ऐसी छुपी हुई बीमारी है कि जिसको आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है ना, सबसे खतरनाक बीमारी जो है ना, वो कौन सी होती है जिसको बीमार अपने जिसको बीमार बीमारी ना समझे, जिसको बीमार बीमारी ना समझे। तो जो अपने आप से मोहब्बत में उबतला है तो वो इस बात को अपनी बीमारी नहीं समझ सकता, ठीक है, तो इसको अपनी बुराई नजर नहीं आती। तकब्बुर वाला जो शख्स होता है ना, तकब्बुर सबसे बुरी बीमारी मशहूर है, एटीबी बीमारी है, एटमी सब कुछ खत्म कर देती है। तो वो अपने असर की वजह से कि वो जो है ना वो यानी जन्नत में दाखिल नहीं होने देती भाई, वो हर चीज की बुराई बयान करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होता है ना। तो तकब्बुर की बुराई बीमार बयान करने के लिए उसको एटमी बीमारी बना करके पेश किया जाता है कि भाई ये बहुत बुरी बीमारी है, लेकिन वो जो उससे भी ज्यादा बुरी बीमारी है, ठीक है, यही मामला जो है ना बिदत का भी यही मामला है, बिदत, ठीक है ना, बिदती जो है ना उसको उसको भी तौबा की तौफीक नहीं होती। क्यों नहीं होती बिदती को तौबा की तौफीक? क्योंकि वो बिदत कर रहा है जो कि गुमराही है, राइट, जो गुमराही है, लेकिन ये बिदत वाले काम को बिदत वो नेकी समझ के कर रहा होता है, तो नेकी के ऊपर कोई थोड़ी तौबा की जाती है। इस वजह से बिदती जो है ना ये कभी तौबा नहीं करता। और जो वाला मामला भी यही है, वो जो कर रहा होता है वो उसको नेकी समझ के कर रहा होता है, इस वजह से वो भी तौबा नहीं करता। अच्छा, इलाज पढ़ने से पहले चंद और भी बातें इसकी इसके बारे में करनी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जैसे कि कंफर्म बात है कि हम सब के सब इसके अंदर मुबतला है ना, तो कुछ और भी एस्पेक्ट्स सामने आते हैं जो कि हजरत ने यहाँ पे लिखे नहीं है, क्योंकि भाई कितना लिखेंगे, है ना, किताब में किताब जो है वो भर जाएगी फिर उसके बाद। तो जो उजुब में मुबतला होता है ना, तो उसके साथ फिर ये मामला होता है कि वो दीन का भी जो इल्म हासिल कर रहा होता है ना, दीन का इल्म जो हासिल कर रहा होता है उससे भी उसको नुकसान हो रहा होता है, वो भला कैसे? ये थोड़ा सा हम आपसे चाहेंगे कि इसके ऊपर रोशनी डालें, अपने अपने घरों से टॉर्च लेकर के आए और रोशनी डालें। जी, दीन पढ़ के इस शख्स को नुकसान क्यों हो रहा होता है? बिदती, सॉरी, उजुब में जो मुबतला होता है उसको दीन के इल्म से नुकसान हो रहा होता है, क्यों कैसे, कोई आप में से बताए? जी, दीन का इल्म इसके लिए नुकसानदेह कैसे होता है? ही स्टार्ट फीलिंग सुपीरियर टू अदर्स, नहीं, क्योंकि आप जो लिख रही हैं ही स्टार्ट फीलिंग सुपीरियर टू अदर्स, ये तो आप तकब्बुर का बयान कर रही हैं, हम तो यहाँ पे उजुब की बात कर रहे हैं। तो उजुब की टॉर्च से इसके ऊपर रोशनी डालें, तकब्बुर की टॉर्च से रोशनी डालें, उजुब की टॉर्च से रोशनी डालें, यानी कीप इन माइंड उजुब, खुद पसंदी, ठीक है जी। कोई और? दीन दो चीजों का नाम है, रियाकारी में मुबतला हो जाता है, रियाकारी में मुबतला हो जाता है दूसरों को दिखाने के लिए, नहीं, ये भी उजुब वाला मामला नहीं है। दीन का इल्म इसको कैसे नुकसान पहुंचाता है? अपने आप को नेक मुत्तकी समझता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन दीन जो है ना वो मेनली दो चीजों का नाम है, पहली चीज इबादात कहलाती है, इबादात, ठीक है, और दूसरी चीज क्या कहलाती है, जब तक किसी और ने भी एक जवाब लिखा है, कि वो इल्म से हासिल होने वाली फजीलतों को अपना कमाल समझता है, इल्म से हासिल होने वाली फजीलतों को अपना कमाल समझता है। फजीलत उसको हासिल हो रही होती है उस इल्म की वजह से जो कि ऊपर से मिला है, ठीक है, लेकिन वो उसको अपना कमाल समझता है। ठीक है, तब इससे इनकार नहीं कर सकते, ठीक है, आप किस बात से इनकार नहीं कर सकते, अगरचे के थोड़ा सा इसमें यानी बहुत ही दकीक नुकता इसके अंदर आपने शामिल किया हुआ है, लेकिन हम इनकार नहीं करेंगे इसका। लेकिन थोड़ा सा और क्लियर अगर आप उसको कर सकें, खुद पसंदी उसको अपनी इसलाह से रोक लेती है, कैसे? ठीक है, चलिए, यू आर गेटिंग देयर, इस तरह कह सकते हैं आपके जवाब को। तो एक चीज है इबादात और दूसरी क्या चीज है मुआमलात, ठीक है, पहला इबादात, दूसरा मुआमलात। इबादात का ताल्लुक, ठीक है, जो अल्लाह ताला की इबादतें हैं, ठीक है ना, नमाज, रोजा, हज, जकात, ठीक है, तो ये इबादात सीख रहा होता है, इबादात दीन का इल्म हासिल करता है ना, तो उसको इबादात के बारे में पता चलता है। तो ये जितनी इबादतें करता है ना, तो इन इबादतों को करने के नतीजे में इसकी खुद पसंदी बढ़ती है। देखो, मैंने कितनी नमाजें पढ़ी, मैंने कितनी तहज्जुदें पढ़ी, मैंने कितनी तस्बीहात पढ़ी, मैंने कितनी तस्बीहात करी, मैंने कितने रोजे रखे, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, ठीक है, क्योंकि खुद पसंदी का बीज इसके अंदर मौजूद था ना। अब ये इबादतें जो कर रहा है, तो इन इबादतों से इसको और बहाना मिल रहा है अपने आप को पसंद करने का, मजीद बहाना मिल रहा है अपने आप पसंद करने का, मजीद इसको एक्सक्यूज मिल रहा है, ठीक है ना, रीजंस मिल रहे हैं अपने आप से मोहब्बत करने के, ठीक है। तो दीन का इल्म इसकी खुद पसंदी को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इबादात का मामला। मुआमलात के अंदर जो दीन का दूसरा शोबा है मुआमलात, इसमें जैसे जैसे इसको इल्म हासिल होता है कि मुआमलात मुआमलात क्या है, चले मुझे तो बता देना कि मुआमलात हैं क्या, मतलब क्या है मुआमलात का इल्म जी। अगर समंदर को कूजे में बंद करने के लिए आपसे पूछा जाए कि मुआमलात डिफाइन करें, व्हाट इज मुआमलात, मुआमलात का इल्म क्या है? हुकूकुल इबाद, माशाल्लाह, ठीक है, हुकूकुल इबाद, राइट, दूसरों के हुकूक क्या होते हैं, बल्कि किसके क्या हुकूक हैं, ठीक है ना, हुकूकुल इबाद का आम जुबान में क्या कहेंगे, किसके क्या हुकूक हैं, ठीक है। अब इसके अंदर है खुद पसंदी, अब ये हुकूक का जो इल्म हासिल कर रहा है, तो इससे इसको नुकसान हो रहा है, कैसे है? इसको इससे नुकसान हो रहा है कैसे, कि इसको अपने हुकूक का इल्म हासिल हो रहा है, ये जो भी हुकूक का इल्म हासिल कर रहा है ना, ये दूसरों को अदा करने के लिए नहीं हासिल कर रहा, ये दूसरों के हुकूक अदा करेगा, बल्कि इसको अपने हुकूक का पता चल रहा है कि इसके हुकूक क्या हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद पसंदी होता है ना, ठीक है, तो इसको जो है ना वो सिर्फ अपने हक नजर आते हैं, ये अपने हुकूक का मुतालबा करता है, ठीक है, क्योंकि ही इज जस्ट कंसर्न विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ, उसको बस अपना आप नजर आता है, तो उसको दूसरों के हुकूक कैसे नजर आएंगे, ठीक है ना। तो दीन का इल्म जो है ना, ये फराइज सीखने के लिए हासिल नहीं कर रहा होता कि भाई मेरे फराइज क्या है, मैं दूसरों के क्या हुकूक मुझे अदा करने हैं, मेरे जिम्मे क्या फराइज हैं, बल्कि इसको ये होता है कि मेरे हुकूक क्या हैं और दूसरे मेरे हुकूक क्यों नहीं अदा कर रहे, क्योंकि आई डिजर्व टू बी गिवन माई राइट्स, ठीक है ना, मेरे हुकूक, सही है। तो इसको इसका जो 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 दीन का इल्म होता है ना, फिर वो नीम हकीम जिसको कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान और नीम उल्ला खतरा ईमान, ठीक है, तो ये नीम उल्ला बन रहा होता है, यानी अपने हुकूक का सब उसको इल्म हासिल हो जाता है और इसको याद रखता है, और दूसरे के हुकूक को ये याद नहीं रखता, क्योंकि इसको दूसरों की परवाह नहीं है, इसको सिर्फ अपनी परवाह है, ठीक है। तो ऐसा शख्स जो होता है ना, फिर इसको हमेशा दूसरे लोग बुरे लगते हैं, दूसरे लोग कमतर नहीं लगते, कमतर कमतर लगना एक अलग बात है, वो तकब्बुर के नतीजे में लोग कमतर लगते हैं, लेकिन खुद पसंदी के नतीजे में दूसरे लोग क्या लगते हैं, कमतर नहीं लगते बल्कि बुरे लगते हैं। वाय, क्योंकि वो इसके हक अदा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसके हक अदा नहीं कर रहे। तो ऐसा शख्स जो है ना, फिर हमेशा सेल्फ विक्टिमाइजेशन का शिकार भी रहता है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद तरसी, खुदा तरसी नहीं, खुद तरसी। तो ये हर वक्त अपने आप को मजलूम समझता है, ठीक है ना, जैसे उन्होंने लिखा कि खुद तरसी का शिकार होकर अपने आप को मजलूम समझता है और दूसरों को जालिम समझता है। कमतर नहीं समझता, जालिम समझता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कमतर समझने वाला तकब्बुर का शिकार होता है, ठीक है, जो खुद अपने आप को बड़ा समझता है दूसरों को कमतर समझता है, वो तकब्बुर है। खुद पसंदी वाला शख्स जो है वो दूसरों को जालिम समझता है और अपने आप को मजलूम समझता है, क्योंकि ये अपने आप को कभी भी जालिम नहीं समझता कि मैंने दूसरों का हक अदा नहीं किया। सबसे पहले किसका हक? अल्लाह का हक। इसको कभी भी बात नजर नहीं आती कि मैंने अल्लाह का हक अदा नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम का हक। इसको ये नजर नहीं आता कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम का हक अदा नहीं किया, राइट। इसको ये नजर नहीं आता कि मैंने माँ बाप का हक अदा नहीं किया, इसको ये नजर नहीं आता कि मैंने बीवी का हक अदा नहीं किया या शौहर का हक अदा नहीं किया, अपने बच्चों का हक अदा नहीं किया, अपने पड़ोसी का हक अदा नहीं किया, इसको ये कभी भी नजर नहीं आता। इस वजह से ये कभी भी अपने आप को जालिम नहीं समझ सकता। आज मुसलमान उम्मत, इल्ला माशाल्लाह, आज मुसलमान उम्मत अपने आप को क्या समझ रही है? जालिम समझ रही है कि उसने अल्लाह का हक अदा नहीं किया, उसने अल्लाह के नबी का हक अदा नहीं किया। क्या समझ रही है? मजलूम समझ रही है, मजलूम, राइट। मरहूम नहीं समझ रही, उम्मत मरहूमा जो नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मरहूम नहीं समझ रही, मजलूम समझ रही है, ठीक है। और हर दूसरा शख्स जो है, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्ध मत का पैरोकार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, वो जालिम है। और ये मामला इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर के होम रिलेशंस तक यही मामला है, राइट। वही जो हम हमेशा कहते हैं, बहू अपने आप को मजलूम समझ रही होती है, सास अपने आप को मजलूम समझ रही होती है, बीवी अपने आप को मजलूम समझ रही होती है, शौहर अपने आप को मजलूम समझ रहा होता है। जालिम कोई भी नहीं समझ रहा अपने आप को, जालिम समझेगा तब तौबा करेगा, तब तौबा करेगा, कभी भी अपने आप को जालिम नहीं समझ रहा होता, ठीक है। तो अब इसका इलाज क्या है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि ये सबसे बड़ा मसला है आज का, सही है। अच्छा, ये किस वजह से ये मसला हमारे अंदर है, ये भी थोड़ा सा, इसकी कॉजेस क्या है, खुद पसंदी की कॉजेस क्या है। तो कॉज जो होती है ना, वो दो तरह की कॉज होती है, दो तरह के वजूहात बनती हैं। एक वजह को आप कह सकते हैं कि अंदरूनी वजह, और एक को कह सकते हैं बैरूनी वजह। कुछ बैरूनी वजूहात होती हैं जो इंसान के ऊपर असरअंदाज होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई बीमारी पैदा करती हैं, और कुछ अंदरूनी वजूहात होती हैं। दोनों किस्म की वजूहात होती हैं जो कि बीमारी कॉज करती हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर आपको फ्लू होता है, फ्लू, तो फ्लू की बैरूनी वजह क्या है, ठीक है। बात को समझने के लिए पहले तो फ्लू बताएं कि फ्लू की बैरूनी वजह क्या है और फ्लू की अंदरूनी वजह क्या है। जी, इतना तो इल्म होगा आप लोगों को, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है इतने इल्म के लिए। जी, फ्लू की या कोरोना है, इसकी बैरूनी वजह क्या है? वायरस, फ्लू का वायरस। और अंदरूनी वजह क्या है इसकी? सही जवाब दिया माशाल्लाह, ठीक है। बैरूनी वजह तो हो गई वायरस, अंदरूनी वजह क्या है इसकी? डिक्रीज इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी, राइट। तो ये वीक इम्यूनिटी जो है ना, ये अंदरूनी वजह है। अगर वीक इम्यूनिटी आपकी ना होती तो वायरस तो बेशुमार होते हैं, लेकिन हर वायरस आपको बीमार तो नहीं कर देता, ठीक है ना। वीक इम्यूनिटी होती है वायरस के खिलाफ, इस वजह से आप बीमार पड़ते हैं ना। तो सिर्फ वायरस को ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि अपनी इम्यूनिटी को भी ब्लेम करना होगा ना कि भाई आपकी वीक इम्यूनिटी क्यों है, आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहिए था, ठीक है ना। आपने ऐसे हरकतें क्यों करी हुई हैं कि जिनकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है, राइट। उसी तरीके से उजब की जो रूहानी बीमारी है, इसकी बैरूनी वजह बताएं और इसकी अंदरूनी वजह बताएं, बैरूनी वजह बताएं और अंदरूनी वजह बताएं। बैरूनी वजह वो जिसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है, काफी हद तक कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, यानी है कंट्रोल लेकिन कंप्लीटली कंट्रोल नहीं है, वो बैरूनी वजह है। तो क्या वजह है उजब की बैरूनी? और उजब की अंदरूनी वजह क्या है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है लेकिन आप उसको नहीं इस्तेमाल करते, आप कंट्रोल को एक्सरसाइज नहीं करते। तो उजब की बैरूनी वजह क्या है और उजब की अंदरूनी वजह क्या है? जी, वीक ईमान इज आवर प्रॉब्लम, ये नहीं चलेगा। ये जो है ना ऑल कवर ऑल एनकम्पसिंग जवाब, ये नहीं चलेगा। खुद पसंदी, खुद पसंदी की वजह खुद पसंदी है। माशाल्लाह, क्या जवाब है आपका, इस जवाब पे हम कुर्बान। उजुब की बैरूनी वजह क्या है और उजुब की अंदरूनी वजह क्या है? सहल पसंदी, फराइज से गफलत, हुकूक का तकाजा, यह अंदरूनी वजह है। ये तो आपने बीमारी को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। सहल पसंदी, भाई सहल पसंदी खुद बीमारी का एक क्या कहते हैं सिम्टम, राइट? सहल पसंदी इज अ सिम्टम, फराइज से गफलत इज अ सिम्टम ऑफ द बीमारी, हुकूक का तकाजा ये उस बीमारी का इजहार है। तो ये अंदरूनी वजह नहीं है, ये कॉज नहीं है, ये तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन बता दी है, राइट? बीमारी की डिस्क्रिप्शन नहीं पूछ रहे आपसे, हम आपसे बीमारी की कॉज पूछ रहे हैं। अकल परस्ती, अकल परस्ती, अब आपको हम कह सकते हैं कि यू आर गेटिंग देयर, राइट? अब आप पहुंच रही हैं कुछ कुछ। बैरूनी वजह क्या है? दूसरों की तारीफ। अंदरूनी वजह अपना नफ्स। चलें, बैरूनी वजह आपने एक अच्छी बयान करी, दूसरों की तारीफ, दूसरे आपकी तारीफें करते हैं तो ये एक बैरूनी वजह बन जाती है। चलें, बिल्कुल, यानी इसको हम बिल्कुल इसका इनकार नहीं कर सकते, आपने अच्छी वजह बताई, बैरूनी वजह, ठीक है, कि दूसरे जो यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु प्रेज यू, है ना, आप अपने तारीफ करने वालों में घिरे हुए हैं, ये बैरूनी वजह है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम आप थोड़ा सा लेके जाए ना जरा निजाम की तरफ, दूसरों की तारीफ जो आपने बड़ी अच्छी रीजन बताई है, ठीक है, तो इसको जरा निजाम की तरफ अगर लेके जाएं, थोड़ा सा ब्रॉडन करें, अपने अपने दोस्तों के सर्कल से जरा इसको वाइडन करें, फैलाएं इसको, तो इसको क्या कहा जाएगा? दूसरों की तारीफ जो हो रही है, राइट? अंदरूनी वजह तो आपने गलत बताई है, अपना नफ्स, ये तो भाई नफ्स की तो बीमारी है सारी के सारी, ये तो आपके गलत जवाब है। बैरूनी वजह, बैरूनी नुमाया होना, दूसरों की तारीफ, ये दूसरों की जो तारीफ है ये अगर निजाम के हिसाब से देखा जाए तो ये कहां से आ रही होती है? आपको प्रेज, यू आर सो गुड, है ना, दूसरे लोग कहते हैं ना यू आर सो गुड, आप कितने अच्छे हैं, तो ये आपके दोस्तों का हल्का भी हो सकता है, ये आपके रिश्तेदारों का हल्का भी हो सकता है, और ये और जरा ब्रॉडन करें तो ये एक निजाम भी हो सकता है, स्कूल, एग्जैक्टली, घर तो छोटा हल्का हो गया ना, स्कूल, ये जो तालीमी निजाम है, ये तालीमी निजाम जो है ये क्या करता है, ये आपकी बुराइयां आपको आपके सामने से छुपा देता है, और ये आपके अंदर जो है ना एक सेल्फ प्रेज, ये इस तालीमी निजाम की असल बुराई है जो कि हमें किसी को नजर नहीं आती, हमें किस किसी को ये नजर नहीं आती, जिसको बुराई नजर आती है ना तालीमी निजाम की, वो सिर्फ नजर आती है म्यूजिक एंड डांसिंग। स्कूलों में म्यूजिक होती है जी, स्कूलों में डांसिंग होती है जी, स्कूलों के अंदर जो है ना वो बेहयाई की बातें होती हैं जी, तो इस वजह से स्कूल अच्छे नहीं है। जो स्कूलों को बुरा समझते भी है ना वो सिर्फ इस वजह से बुरा समझते हैं, स्कूल सिस्टम को या एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ इस वजह से बुरा समझते हैं क्योंकि वहां म्यूजिक होती है, वहां डांसिंग होती है, और वहां पे कोई इस तरह की बेहयाई वाली चीजें होती हैं, उससे ज्यादा हमें समझ में नहीं आता कि इस निजाम की क्या खराबी है, ठीक है ना। इतना लंबा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी फरमाइए, ठीक है। हमें ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने जो निजाम बनाया हुआ है जिसके अंदर इनकी सारी की सारी किताबें और इनसे इल्म हासिल किए हुए जो टीचर्स हैं, ये पूरा का पूरा निजाम जो है ना ये इंसान को खुद पसंदी का शिकार कर रहा होता है, खुद पसंदी का शिकार कर रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप आपकी तनकीद नहीं होती कोई, बल्कि इसमें आपको जो है ना वो बहुत पंप अप किया जा रहा होता है, बहुत पंप अप, ठीक है, इस वजह से इस तालीमी निज़ाम से पढ़ के निकलने वाला जो है ना, फिर ये तकलीद के खिलाफ होता है, ये तकलीद का दुश्मन होता है ये, ठीक है। और ये जो है ना, फिर वो अपने आप को सबमिट करना, अपने आप को सुपुर्द करना, ये सारी चीजें इसको समझ में नहीं आती फिर, ठीक है। ये सब कुछ इसके अंदर बस मैं मी माई सेल्फ एंड आई, ठीक है ना, बस जो है वो मेरी वजह से है, जो मुझे मिलेगा वो मेरी मेहनतों की वजह से मिलेगा, राइट। जितनी मैं मेहनत करूंगा उतना जो है वो गुड़ मिलेगा, है ना, जितना मैं गुड़ डालूंगा उतना मीठा मिलेगा, ठीक है। इस किस्म की चीजें जो है ना, वो रग रग रेशे रेशे में रच बस जाती हैं, रग रग रेशे रेशे में रच बस जाती हैं। और अल्लाह की, मेरी मेहनतों से कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह से होता है जो होता है, ये उसके रग रग रेशे रेशे से निचोड़ के बाहर निकाल दिया जाता है, ये इस तालीमी निजाम के जरिए से होता है, ठीक है ना। लेकिन इतनी किस किस किसको नजर आएगी ये सारी बातें, है ना, हमें तो ये नजर ही नहीं आती है वाली बात। खुद को अकल कुल समझना, इसी को कहते हैं खुद को अकल कुल समझना, ठीक है। फिर ये अपनी अकल की बुनियाद पर जो है ना, वो हर एक को तोलता है, हत्ता के नबी को भी अपनी अकल पे तोलता है और अल्लाह को भी अपनी अकल पे तोलता है। बाकी मौलवी लोग तो छोटी चीज है, अल्लाह और नबी के मुकाबले में मौलवियों की क्या हैसियत है, ये तो अल्लाह को अपनी अकल पे तोल रहा होता है, मौलवी साहब की क्या हैसियत है फिर, ठीक है। तो ये वो बैरूनी बैरूनी निजाम है कि जो कि पूरी की पूरी दुनिया को इस वक्त खुद पसंदी में मुब्तला कर रहा है, खुद पसंदी में मुब्तला कर रहा है, और जाहिर है मुसलमान भी इसी इसी सिस्टम का एक हिस्सा है ना, मुसलमानों का अपना कोई सिस्टम तो है नहीं, मुसलमान भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो हो गए बैरूनी, ठीक है, बैरूनी कॉज, बैरूनी रीजन, ठीक है ना, चाहे ये आपके दोस्त हो जो आपकी तारीफें करते हैं, आपके रिश्तेदार हो जो आपकी तारीफें करते हैं, या ये तालीमी निजाम हो जो कि आपकी तारीफें करता है, ठीक है। तो ये बैरूनी कॉजेज है, बात समझ में आ रही है, उम्मीद है कि कोई अल्लाह की बंदी लिख भी रही होगी इसको, या सब कुछ माशाल्लाह अकल इतनी अच्छी है कि सबको याद भी रहेगा, सबको समझ में भी आ रहा होगा, खुद पसंदी, राइट, ठीक है। जो कमजोर लोग होते हैं ना वो लिख लिया करते हैं, और जो ताकतवर लोग होते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माशाल्लाह वो अकल कुल है, ठीक है ना। तो बैरूनी कॉज तो ये हो गया, अंदरूनी कॉज क्या है इसका, कि जो कि हमारे अपने हाथ में है, हमारे अपने कंट्रोल में है, ठीक है, कि अगर हम उसको इख्तियार करें तो ये खुद पसंदी हमारे अंदर नहीं पैदा हो, ये खुद पसंदी हमारे अंदर नहीं पैदा हो, लेकिन अगर हम अपने इख्तियार से उसको मुस्तरद कर दें तो फिर खुद पसंदी अपने अंदर पैदा हो जाए, ठीक है ना। तो वो अंदरूनी कॉज क्या है कि जिसकी वजह से खुद पसंदी हमारे अंदर पैदा होती है, मतलब ये कि वो कौन सा ऐसा कॉज है जो कि हमारे कंट्रोल में, वी कैन अडॉप्ट इट एंड वी कैन रिजेक्ट इट, हम उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो क्या है। अंदरूनी कॉज क्या है खुद पसंदी की, आजिजी, क्योंकि आजिजी और इंकसारी इख्तियार करना वो आजिजी और इंकसारी इख्तियार कैसे करेंगे, खुद पसंदी का कॉज ही आपने अपने अंदर से दूर नहीं किया, तो अपने आप को इस्लाह के लिए अल्लाह वालों के सुपुर्द करना, तो निकल आए इससे, लफाजी से बाहर निकल आए, किताबों में जो पढ़ लिया था, बयान में जो सुन लिया था, वही अभी तक चल रहा है, अपने आप को अल्लाह वालों के सुपुर्द करना है, कितना जबरदस्त थ्योरेटिकल आंसर है, ठीक है। दीदे कसूर ना होना, ठीक है, दीदे कसूर, ये भी वैसे एक अच्छा खासा लिटरेरी किस्म का टर्मिनोलॉजी है, दीदे कसूर कैसे हासिल होगी, दीदे कसूर कैसे हासिल होगी, क्या चीज आप अपने घर में, कितनी दफा आप लोगों को, आप तो पुराने लोग हैं भाई, आपके घर में क्या चीज होगी तो आपको अपने कसूर नजर आएंगे, क्या चीज नहीं होगी तो फिर कसूर नजर नहीं आएंगे, दीवार को देख करके आपको कसूर नजर आ सकते हैं अपने, मेकअप करती हैं आप, क्या ख्याल है, आपने कभी मेकअप किया है, दीवार को देख करके, दरवाजे को देख के कभी मेकअप किया आपने, लिपस्टिक लगाई है? पर्दे को देख करके कभी लिपस्टिक लगाई है? क्या देख करके लिपस्टिक लगाती हैं कि गलत ना लग जाए कहीं, कि मेरी लिपस्टिक जो है ना वो कहीं मेरे होठों से हट करके कहीं मेरे नाक पे ना लग जाए? क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? आईना, सबको पता है ना, कभी कोई आईने के बगैर लिपस्टिक नहीं लगाती। आई लैशेज तो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। मिरर, मिरर चाहिए अपने अपने आप को ऐबों से बचाने के लिए, अपने ऐबों को देखने के लिए मिरर चाहिए, आईना चाहिए है आपके इख्तियार में है। आप अपने घर में आईना रखें या ना रखें, ये कोई बैरूनी कॉज नहीं है कि आपके घर में आईना है कि नहीं है। आपका अपना घर है भाई, मर्जी है आपकी आईना रखें या ना रखें। तो अपने ऐप कैसे नजर आएंगे? आईना होगा तो नजर आएंगे ना, आईने के सामने अपने आप को खड़ा करेंगी तो नजर आएंगे ना, राइट? और जिसकी जिंदगी में कोई आईना ना हो, जो उसके ऐब उसको बताता हो, जो उसके सामने उसके ऐब खोलता हो, तो उसको अपने ऐब कैसे नजर आएंगे? बताएं ना जरा, कैसे नजर आएंगे? है कोई आईना जो कि ऐप बताता हो, जो कि हमें हमें मजीद खुशफहमियों में और खुद पसंदी में मुबतला ना करता हो, बल्कि हमारे सामने हमारे ऐप खोलता हो? कोई है हमारी जिंदगी में ऐसा? कोई है उम्मत की जिंदगी में ऐसा? हमें तो पैर पड़ जाने चाहिए अपने मशायख के, कि हजरत जी मुझे वजीफे मत बताएं, हजरत जी मुझे जो है ना मेरी तारीफ के पुल मत बांध दें, हजरत जी मुझे मेरे ऐब बताएं। हजरत जी ने तो बताए और बहुत बताए, बयानात भी भरे हुए हैं और किताबें भी भरी हुई हैं। अब हजरत जी की उम्र ऐसी हो गई है कि अब उनके अगले छोटों को जरूरत है कि वो ऐब बताया करें। अब हजरत जी की उम्र जो है ना वो दादा, बल्कि परदादा की, अब परदादा और दादा जो है ना वो ये वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो भाई अब तो जो इस वक्त हैं, राइट, हमें तो उनके पैर पड़ जाने चाहिए कि आप मुझे अपने ऐप बताएं, अपने नहीं बताएं, मेरे बताएं, ठीक है? और जो ऐप बता रहा हूं शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपने मेरे ऊपर मेरे ऐबों को इस दुनिया में खोल दिया, वरना तो कब्र में तो खुलेंगे, हशर में भी खुलेंगे, राइट? इस दुनिया में जिसके खुल गए वो खुशकिस्मत है, वो खुशकिस्मत है, ठीक है ना? और इस लिहाज से माशाल्लाह क्या जबरदस्त बात आपने लिखी, इस लिहाज से तो शौहर सबसे बड़ा आईना है, क्योंकि वो बस ऐब ही बताता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, शौहर सबसे बड़ा आईना है क्योंकि वो बस ऐब ही बताता है। इसके ऊपर शौहर से नाराज नहीं होना चाहिए, अगर इसलाह की फिक्र हो तो शौहर शौहर के भी दिल में शुक्रिया ही अदा करना चाहिए। हजरत अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात मर्दों से कही कि सबसे बड़ी मुसलह तुम्हारी बीवी है, सबसे बड़ी मुसलह तुम्हारी बीवी है ना? तो भाई वो उन्होंने मर्दों से बात करी थी, आप चूंकि खवातीन हैं तो खवातीन के लिए तो भाई शौहर है, ठीक है ना? तो दोनों तरफ ये मामला है, ठीक है ना? है लेकिन आईने भी हैं, लेकिन कोई उसको आईना समझे तो ना तो फायदा हो ना उसको, तो फिर नाराजगी और मुंह फुलाना और फिर वो एक दूसरी किस्म एक ऐप बता दिया, तो फिर तो वो है ना, यू आर यू ऑन योर वे, मी ऑन माई वे, है ना? यू मी माई वे और द हाईवे, ठीक है ना? या तो हाईवे पे जाओ या मेरे मेरे रास्ते पे चलो, खबरदार जो मुझे मेरा ऐप बताया, ठीक है ना? लेकिन है तो ऐसा नहीं ना, हमारे मशाइख क्या फरमाते हैं, शौहर तो शेखुल बैत होता है, घर का शेख तो शौहर होता है, और जो बैत वाले शेख होते हैं तो वो तो फिर उन्होंने तो अक्सर वो कितने ऐब जानते हैं, वो कोई आलिमुल गैब के थोड़ी है कि उनको पता हो कि आपके अंदर क्या क्या ऐब हैं। हाँ कभी अल्लाह ताला उनके ऊपर खोल देते हैं तो फिर वो आपको आपके ऐब बता सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। तो असल शेख तो घर के अंदर मौजूद है, लेकिन घर की मुर्गी क्या होती है, दाल बराबर, ठीक है? चलें अल्लाह ताला से दुआ तो हम कर सकते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले करके उसके बाद फिर मिसाली सांस की क्लास शुरू करते हैं।